मेरी बात मानो, आप दोनों अपने अपने पतियों के साथ खुश रहिए। अगर कोई मुझे इतना प्यार करने वाला मिले ना, तो मैं तो एक मिनट भी उससे दूर ना रहूं, हमेशा उसके साथ चिपकी रहूं। सारा ने कहा, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे जो भैया मेरे साथ कर रहे हैं ना, मेरी आगे पीछे घूम रहे हैं, तुम भी आकर कहोगी कि बहुत पीछा कर रहा है, पीछा नहीं छोड़ता। देख लेना, इतना चिपकेगा और वो तुम्हारा पति होगा। मानवी बोली, सही बात है, मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हें भी वैसा ही मिले, जैसा आयान मेरे पीछे पीछे घूम रहा है ना, तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। और जो मेरे अंदर चल रहा है ना, वो तुम्हारे अंदर तब चलेगा जब तुम्हारे साथ होगा, तब पता चलेगा। मानवी और जोया दोनों ही सारा से कह रही थीं, मुझे इंतज़ार रहेगा ऐसी लव स्टोरी का, वो मुझ पर जान छिड़क दे और मैं उसकी अदाओं पर मरूं। सारा बोली, सारा प्लीज, जिंदगी सपनों की दुनिया नहीं होती, जोया ने हंसते हुए कहा। मगर लव स्टोरियां तो इसी दुनिया में बनती हैं। लव स्टोरी तो आप दोनों की ज़बरदस्त है, वेद चाचू और मानवी चाची, अयान चाचू और जोया चाची। सचमुच आप दोनों की जोड़ी है ना, वो सबसे फेवरेट है। मेरे चाचू वो क्या करें, आप दोनों को उन पर तरस नहीं आता? सभी बैठी हंस रही थीं। मानवी वहां तक आई तो वेद के साथ थी। वेद उसे बाहर छोड़ता हुआ दूसरी साइड निकल गया था, जहां पर अयान और बाकी मंडली बैठी हुई थी। अभी सभी वहां हल्दी के प्रोग्राम में नहीं पहुंचे थे। होटल के पीछे का बड़ा सा आंगन हल्दी के प्रोग्राम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। वहां पर पहले हुई मेहंदी की यादें अभी भी ताज़ा थीं, लेकिन इस बार सजावट और भी रंगीन और खुशगवार थी। पूरे आंगन में गेंदा और रजनीगंधा के फूलों की महक फैली हुई थी। एक तरफ छोटा सा स्टेज बनाया गया था, जो जमीन से थोड़ा ऊँचा था। स्टेज पर पीले और हरे रंग की दरी बिछी थी और उसके ऊपर बड़े बड़े कुशन रखे गए थे। बैकड्रॉप पर गेंदा के फूलों की झालरें लटक रही थीं और बीच में खूबसूरत सा बोर्ड लगा था, जिस पर दूल्हा दुल्हन के नाम और हल्दी सेरेमनी लिखा था। होटल के पीछे का बड़ा सा खुला आंगन आज हल्दी के प्रोग्राम के लिए किसी मेले जैसा सजा हुआ था। चारों ओर गेंदा और रजनीगंधा के फूलों की झालरें हवा में झूल रही थीं। बीच में बनाया गया छोटा सा स्टेज पूरे आंगन की शोभा बढ़ा रहा था। स्टेज पर दो गद्देदार चौकोर पीढ़े रखे थे, जिन्हें पीली दरी और फूलों की पंखुड़ियों से सजाया गया था। बैकड्रॉप पर लंबी लंबी फूलों की झालरें लटकी थीं और बीच में एक सुंदर सा बोर्ड था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में हल्दी सेरेमनी और दोनों के नाम लिखे थे। स्टेज के सामने रंग बिरंगी फूलों की रंगोली बनी थी। ऊपर से चारों ओर रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों की झालरों से कैनोपी जैसी सजावट की गई थी, जिससे जगह पर हल्की छांव और खूबसूरत रंगीन माहौल बन रहा था। एक साइड पर डांस फ्लोर तैयार था, जहां डीजे और साउंड सिस्टम लगा था। हल्की हल्की धुनें बज रही थीं और बच्चे पहले से ही वहां नाचने लगे थे। मेहमानों के बैठने के लिए स्टेज के सामने और किनारों पर कुर्सियों की कतारें लगी थीं। हर कुर्सी पर पीले और हरे रंग की रिबन बंधी थी। दूसरी ओर खाने पीने के काउंटर पर स्नैक्स और जूस की खुशबू फैल रही थी। सबसे पहले सुधीर होटल के पीछे वाले आंगन में दाखिल हुआ। उसके साथ उसके सारे भाई और दोस्त थे। यही वजह थी कि वेद भी उसी के साथ आया था। सबने सफेद रंग के पजामे कुर्ते पहने हुए थे और गले में पीले रंग के दुपट्टे डाले हुए थे। सबकी एंट्री एकदम शाही लग रही थी। घर की औरतें पहले से आंगन में मौजूद थीं। वे सब स्टेज के पास बैठी थीं और सुधीर को आते देख मुस्कुराते हुए आपस में बातें करने लगीं। ठीक उसी समय वेद और मानवी की नजरें मिली। वेद ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मानवी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली। जोया भी चुपचाप बैठी थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र आयान पर पड़ी, दोनों की निगाहें मिली और फिर जोया ने भी नज़र फेर ली। मन ही मन वो सोचे जा रही थी, अभी तो मेरी रुखसती हुई भी नहीं और ये हालत है, बाद में क्या करेगा? और गुस्से में मन ही मन आयान को कोस रही थी। सुधीर को उसकी माँ ने स्टेज पर बने पीढ़े पर बैठाया। तभी रुचिका अपनी सहेलियों और बहनों के साथ आंगन में आई। उसने पीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था, दुपट्टा अच्छे से कंधे पर टिका हुआ था, बाल पीछे खुले थे और आगे से पिनअप किए हुए थे। हल्के मेकअप में वो बेहद निखरी हुई लग रही थी। उसके आते ही म्यूजिक बजने लगा। आंगन में हल्की हल्की गुनगुनाहट और शोर गूंज उठा। रुचिका की नज़र सुधीर पर पड़ी, जो पहले से बैठा हुआ था। सुधीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और रुचिका भी मुस्कुरा दी। वो धीरे धीरे चलकर सुधीर के पास आई और उसके बगल वाले पीढ़े पर बैठ गई। खूबसूरत लग रही हो, सुधीर ने धीमे से कहा। आप भी अच्छे लग रहे हैं, रुचिका ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई। सबसे पहले सुधीर की माँ ने हल्दी लगाई, फिर उसके डैड आ गए। उसी समय रुचिका की माँ और दादी ने भी उसकी रस्म पूरी की। बड़े बुजुर्गों के बाद अब छोटे बच्चों की बारी थी और यही सबसे मज़ेदार पल होता है। बच्चे थाल से हल्दी लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। चारों ओर हंसी और शोर गूंजने लगा। वेद और मानवी भी घर के सबसे बड़े बेटे बहू होने के नाते आ गए ताकि रस्म पूरी करें। माहौल पूरी तरह मस्ती और खुशियों से भर गया था।
बड़ों की हल्दी लगाने के बाद बच्चों की बारी आई और तभी असली मजा शुरू हुआ। छोटे छोटे कजिन्स थाल में से हल्दी लेकर एक दूसरे के गालों पर लगाने लगे। कोई सुधीर के गाल पर लंबी लकीर खींच देता तो कोई रुचिका की नाक पर पीली बिंदी बना देता। रुचिका की सहेलियां भी पीछे नहीं रहीं, उन्होंने मस्ती में उसकी हथेलियों और बाजुओं तक हल्दी लगा दी। सुधीर के भाई जानबूझ पर हल्दी लेकर उसके पूरे चेहरे पर लगा रहे थे और सब टहाके लगाते हुए हंस रहे थे। तभी डीजे पर तेज बीट वाला गाना बजा और माहौल और भी रौनकदार हो गया। बच्चे और कजिन्स डांस फ्लोर पर कूद पड़े, औरतें भी गाने गाने लगी। कोई ढोलक पर थाप देने लगी तो कोई ताली बजाकर लोकगीत गाने लगी। वेद और मानवी ने भी रस्म पूरी करने के बाद स्टेज से नीचे उतर आए। रुचिका और सुधीर हल्दी में पूरी तरह नहाए हुए लग रहे थे। उनके कपड़ों पर भी पीले धब्बे पड़ गए थे, लेकिन दोनों हंसते हुए इसे एंजॉय कर रहे थे। तभी किसी कजिन ने पास रखी पानी की बाल्टी उठाई और सुधीर पर छपाक से पानी डाल दिया। सब हंसी से फट पड़े। फिर तो एक एक कर सबने बाल्टियों और मग से पानी लेकर दोनों पर डालना शुरू कर दिया। रुचिका चीखते हुए उठी और भागने लगी, लेकिन उसकी सहेलियां उसे पकड़कर वापस स्टेज पर ले आई। थोड़ी देर बाद सबने तौली और साफ कपड़े लाकर दोनों को दिए ताकि वे जाकर चेंज कर सकें। आंगन में हंसी, म्यूजिक और टहाकों से माहौल गूंज रहा था। बच्चे अभी भी इधर उधर भागकर एक दूसरे पर हल्दी और पानी लगा रहे थे। बड़े लोग कुर्सियों पर बैठकर मस्ती देख रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। हल्दी की रस्म पूरी तरह एक यादगार पल में बदल चुकी थी, जिसमें हंसी, शरारत और प्यार सब कुछ था। इसी मस्ती के बीच किसी को पता भी नहीं चला कि वेदांत चुपचाप आंगन से निकल गया। होटल के पीछे वाले कॉरिडोर में उसके डैड रमेश मेहरा पहले से खड़े थे। वेदांत ने आते ही गुस्से में कहा, तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया डैड, अभी हल्दी चल रही है। रमेश मेहरा के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। मुझे भी तो देखना था वेदांत, देखना था कि कैसे वेद की बर्बादी की शुरुआत हो रही है। वेदांत चौंक गया। मतलब, और आपने मुझे आंगन से बाहर क्यों बुलाया, रमेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
मैंने तुम्हें जानबूझकर साइड किया है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम इस खेल में आए। बस तमाशा देखो, असली खेल अभी शुरू हुआ है। वेदांत की मुट्ठियां कस गईं। आखिर क्या प्लान है दादा, रमेश हल्का सा हंसा। वही प्लान जो वेद की पूरी दुनिया उलट पुलट कर देगा।